कमरे में अब भी वही भारी खामोशी पसरी हुई थी। बाहर से आती ठंडी हवा खिड़की के दरारों से धीरे धीरे भीतर घुस रही थी, लेकिन अंदर का माहौल इतना गर्म था कि मानो हर सांस में आग घुली हो। अखिल अब भी रैना को अपनी बाहों में थामे खड़ा था। उसका सीना तेजी से उठ गिर रहा था और दिल की धड़कनें इतनी साफ सुनाई दे रही थीं जैसे हर धड़कन रैना के कानों तक पहुंच रही हो। रैना की हथेलियां हल्के हल्के अखिल की छाती को धकेल रही थीं, पर उतनी मजबूती से नहीं जितनी वो खुद चाह रही थी। उसकी उंगलियों का स्पर्श जैसे उसी की हिम्मत को धोखा दे रहा था। अखिल, हमें ये सब नहीं करना चाहिए, उसने धीरे धीरे कहा। उसकी आवाज में कसमसाहट थी। अखिल ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में गहरी तृष्णा थी, लेकिन उसके चेहरे पर सख्ती नहीं थी, सिर्फ चाहत थी। तो रोक लूं मुझे, उसने धीमी आवाज में कहा। क्या तुम सच में मुझे दूर धकेल सकती हो? रैना के होंठ हिले, पर शब्द बाहर नहीं निकल पाए। उसका चेहरा हल्का सा झुक गया। अखिल ने उसके गाल को अपनी उंगलियों से सहलाया। उसके अंगूठे ने धीरे धीरे रैना के गाल की नमी को महसूस किया। तुम्हारी आंखें झूठ नहीं बोलती रैना, उसने फुसफुसाकर कहा। रैना ने अपनी पलकों को झुका लिया। उसके अंदर एक तूफान मच रहा था। एक तरफ गुस्सा, नफरत और डर, दूसरी तरफ एक अजीब सी खिंचाव, एक अजीब सी तड़प। अखिल ने धीरे धीरे अपना माथा उसके माथे से टिकाया। दोनों की सांसें एक दूसरे से टकराने लगीं। कुछ पल तक वे वहीं खड़े रहे, मानो समय थम गया हो। फिर अखिल ने धीरे से उसकी ठुड्डी ऊपर उठाई। उसकी आंखों में देखते हुए वो और करीब आ गया। इस बार उसने कोई जबरदस्ती नहीं की, बस रैना को मौका दिया कि अगर वो चाहे तो खुद पीछे हट जाए। पर रैना पीछे नहीं हटी। उसकी आंखें बंद हो गईं और अखिल के होंठ उसके होंठों को हल्के से छू गए। वो किस धीमी थी, गहरी भी नहीं, पर इतनी नर्म कि रैना का पूरा शरीर जैसे कांप उठा। उसने अपने होंठों को सख्त रखने की कोशिश की, पर कुछ ही पल बाद उसका प्रतिरोध टूट गया। अखिल ने उसे और करीब खींच लिया। उसकी हथेलियां रैना की कमर पर आकर ठहर गईं। रैना की सांसें तेज थीं। उसके सीने का उतार चढ़ाव अखिल की छाती से टकरा रहा था। किस लंबा नहीं था, बस इतना कि दोनों की धड़कनें एक हो जाएं। अखिल ने धीरे से पीछे हटकर उसकी आंखों में देखा। देखा, जब तुम खुद को रोकती हो तब भी तुम्हारा दिल मुझे ढूंढ ही लेता है। रैना ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे अखिल की पकड़ से खुद को छुड़ाया। ये सब गलत है, उसने कांपती आवाज में कहा, पर उसकी आंखें अभी भी नम थीं और गाल लाल हो चुके थे। अखिल ने उसके चेहरे को छूते हुए कहा, गलत वो होता है जिसे दिल ठुकरा दे, लेकिन ये, उसने उसके कानों के पास झुककर फुसफुसाया, ये तो तुम्हारी हर सांस की सच्चाई है। रैना ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की। उसका सीना तेजी से उठ गिर रहा था। वो चाहकर भी खुद को संभाल नहीं पा रही थी। अखिल ने धीरे धीरे उसके कंधे को छुआ, फिर उसकी बाह पर अपनी उंगलियां फेरते हुए उसकी कलाई पकड़ ली। रैना का दिल जैसे किसी अनजाने डर और चाहत से भर गया। उसने फौरन अपनी कलाई छुड़ाई और कुछ कदम पीछे हट गई। अखिल, प्लीज और मत पढ़ो, मुझे सांस लेने दो, उसने धीरे धीरे कहा। अखिल वहीं खड़ा रहा, पर उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, उसमें सिर्फ एक तड़प और नरमी थी। उसने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, लेकिन जो तुम्हारे चेहरे और तुम्हारी सांसें कह रही हैं उसे मैं अनसुना नहीं कर सकता। कमरे में फिर खामोशी फैल गई। रैना खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। बूंदें कांच पर गिर रही थी और उनकी आवाज पूरे कमरे को और भी सन्नाटे से भर रही थी। उसने बाहर देखते हुए धीरे से कहा, अखिल तुम्हें समझना होगा, मेरे लिए ये सब आसान नहीं है। हर बार जब तुम मुझे छूते हो मुझे लगता है जैसे मैं खुद से लड़ रही हूं। अखिल धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। तुम मत लड़ो, उसने पीछे से कहा, बस खुद को एक बार मेरे हवाले कर दो, शायद तुम्हें अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएं। रैना ने उसकी तरफ पलट कर देखा। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। और अगर ये रास्ता मुझे कहीं अंधेरे में लेके आ तो? अखिल ने बिना झिझके उसका चेहरा दोनों हथेलियों में थाम लिया। तुम्हें वो अंधेरा भी तुम्हारे लिए रोशनी बना दूंगा, उसने गहरी आवाज में कहा। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर रैना ने अपनी पलकों को धीरे से झुका लिया और अखिल के सीने पर सिर रख दिया। अखिल ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और उसे अपने और करीब खींच लिया। उस पल में दोनों की धड़कनें एक लय में चलने लगीं। अब ना कोई शब्द थे, ना कोई रोक टोक, बस एक गहरी खामोशी थी जिसमें चाहत, डर और सुकून सब घुल चुके थे। रैना ने आंखें बंद रखी। उसके होंठों से हल्की सी सांस निकली और अखिल ने उसकी पेशानी पर किस कर दिया। वो पल इंटिमेट था, लेकिन हल्का, जहां जिस्म से ज्यादा आत्मा की नजदीकी थी। दोनों एक दूसरे की गर्माहट में खोए खड़े रहे, जैसे दुनिया की सारी हलचल कमरे की चार दीवारों से बाहर छूट चुकी हो।
ये है मेरी दूसरी नॉवल, ये इश्क बड़ा बेदर्दी। हाँ, वो इंसान नहीं शैतान है, लेकिन तू उसकी दवा। ऐशा, एक मासूम और होशियार कॉलेज स्टूडेंट जिसकी जिंदगी अब तक किताबों, सपनों और छोटी छोटी खुशियों में सिमटी थी, अचानक एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी होती है जहां उसे एक ऐसा फैसला लिया जाता है जो उसकी पूरी दुनिया बदल देता है। एक टूटी हुई माँ उसके सामने हाथ जोड़ती है, तू ही उसकी दवा है, और ऐशा को शादी का प्रस्ताव दिया जाता है। लेकिन ये शादी कोई प्रेम भरा बंधन नहीं, बल्कि एक ठोस समझौता है। रिश्ता उस इंसान से जिसे कॉलेज वाले प्रोफेसर कहते हैं, अर्जुन कपूर, जिसके दो रूप हैं, एक अच्छा, दूसरा क्रूर। वो एक ऐसा पुरुष है जो दिल से नहीं, जख्मों से सोचता है, जिसकी आंखों में प्यार नहीं, अतीत की राख चलती है, और जो अपनी ही परछाई से डरता है क्योंकि उसका अंधेरा खुद उसकी रूह को खा चुका है। ऐशा इस रिश्ते को स्वीकार करती है, बट नॉट आउट ऑफ लव, बल्कि एक माँ के आंसुओं की लाचार पुकार के आगे झुककर। लेकिन क्या ये समझौता कभी एक रिश्ता बन पाएगा? क्या एक मासूम लड़की एक ऐसे मानसिक रूप से घायल इंसान को ठीक कर सकती है जो लोगों की भावनाओं से नहीं, उनके खून से खेलता है? क्या प्यार वहां बनप सकता है जहां हर दीवार डर और हर खामोशी एक चीख बन चुकी है? ये एक ऐसी कहानी है जहां रिश्ते दस्तखत से शुरू होते हैं और तड़प की आग में तपकर असली इम्तिहान में बदलते हैं, जहां एक लड़की अपनी मासूमियत से एक रूह की राख को छूने की कोशिश करती है और एक आदमी अपने अंदर के दानव से लड़ते हुए इंसान बनने की चाह में तड़पता है। ये कहानी है एक समझौते की जो मोहब्बत की सबसे मुश्किल इब्तिदा बनती है, एक ऐसे रिश्ते की जहां हर दिन एक जंग है और हर जंग के बाद एक उम्मीद।